لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم عاد الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتاب حكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزيزنا محترم، یہ سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری ہے. یہ جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا، یہ 149 آیت تھی. یہ جو آیتوں کا سلسلہ ہے، یہ جنگ احد کے ہی بارے میں ہے، اور یہ آیتیں اسی ذیل میں نازل ہو رہی ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے اور تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے. جنگ احد کے جو حادثے ہوئے، جس میں اتنی مسلمانوں کو سختیاں پہنچی، اس کے بعد مسلمانوں کے گروہ نے ہمت ہار دی، تو کافروں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور ان کے ذہن میں برے برے خیال لانا شروع کر دیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہا کہ یا اہل الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. کہ ایمان لانے والوں، اگر تم نے کافروں کا کہنا مان لیا تو تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. کیونکہ جب موقع تھا کہ مسلمان کمزور ہیں، تو کافروں نے اپنے حربے استعمال کرے، سائیکولوجیکل وارفیئر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو بچایا کہ اگر تم نے ان کا بھی کہنا مان لیا تو تم الٹے پھاؤ ہو کے مرتد ہو جاؤ گے. فتنقلبوا خاسرین، آگے اللہ کہتا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ خدا ہی تمہارا مولا ہے اور سب سے اچھا مددگار ہے. بل اللہ مولاکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے نصرت کرتا ہے مومن کی قرآن حکیم کے ذریعے. ہم قرآن پڑھتے رہے تو ہم کو احساس ہوتا رہے گا کہ ہمارا مولا خدا ہے، وہ ہوا خیر الناصرین. یہ آج ہم کو، کیونکہ ابھی بھی حربے استعمال ہوتے ہیں، آج کل اسلام و فوبیا جو چل رہا ہے، ہمارے جو حوصلے جب پست ہیں، ہمارا مولا بھی خدا ہے. مشکلات ہیں، مسلمانوں کا مولا خدا ہے. اور اس طریقے کے جو ہم کو جو سال کا جو وافر ہوتے ہیں کہ حجاب پہن کے باہر مت جانا، ہو سکتا ہے حملہ ہو جائے. اس طرح کے حربے شیطان استعمال کر کے خوف دلاتا ہے، آج بھی یہی حالت ہے. تو ہمارا مولا خدا ہے. ایک درود پڑھ رہا ہے، اللہم صل علی محمد. یہ آیت میں ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین. مأواهم النار وبئس مثوى الظالمین، ہم ان قریب کافروں کے دل میں روب ڈال دیں گے. یہ اس لیے انہوں نے خدا کے ساتھ شرک کرا جس کی خدا نے کوئی دلیل نازل نہ کری تھی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو کہ برا ٹھکانہ ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں وہ واحد پیغمبر ہوں کہ جس کو خدا نے روب اور ہیبت دے کے بھیجا. خدا نے سرکار کو روب اور ہیبت سے مدد دی، کہ مسلمان اور سرکار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اتنا روب اور ہیبت بیٹھا ہوا تھا. یہ قرآن میں آگے کی آیتوں میں کہ تمہارا روب بہت زیادہ، اللہ نے بتایا مسلمانوں کا روب کتنا بیٹھا ہوا تھا. کیونکہ کتنی حدیثیں اس بارے میں کہ اگر تم خدا سے ڈرتے رہو گے تو دنیا تم سے ڈرے گی. کیونکہ خدا سے ہم ڈرے تو دنیا ہم سے ڈرے گی، اگر ہم خدا سے نہ ڈرے تو ہم دنیا بھر سے ڈریں گے. آج کل مسلمان تو رہا دنیا بھر سے ڈرتا رہتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا ہے. تو یہ دلیل ہے اس قرآن حکیم کے اندر کہ ہم روب ڈال دیں گے، تمہارا روب ڈالے گا، رسول کا روب ڈالے گا، مومن کا روب ڈالے گا، خدا. क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ शिर्क करा। जो शिर्क करता है वो कमजोर बोदा हो जाता है, वो बोदा हो जाता है। खुदा से दुआ है कि हमको अल्लाह सुबहान तआला उससे डरने वाला बनाए ताकि दुनिया हमसे डरे। आज आज मोमिनों का एक गिरोह है दुनिया में जिससे दुनिया डरती है, हालांकि छोटा गिरोह है। एक दुरूद पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब आगे की आयत जो 152 आयत है, इंशाल्लाह धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये आयत है जंग के दौरान की, जंग ओहद की। वलकद सदकुमुल्लाह वादहु इस तहसुनहुम बिइदनी। बेशक खुदा ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया जबकि तुम उसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे। किसको कत्ल कर रहे थे? कुफार को। अब मैं आयत धीरे धीरे पढ़ूंगा इंशाल्लाह ताकि ओहद की जंग समझ में आए। कह लकद सदकुमुल्लाह वादहु इस तहसुनहुम बिइदनी, कि खुदा ने बेशक अपना वादा सच्चा कर दिखाया कि तुम उसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे। क्योंकि शुरू के अंदर जंग में जीत थी मुसलमानों की, फिर जीत थी। हत्ता इज़ा फशिल तुम व तनाज़ाओ तुम फिल अमरी व असाय तुम मिम्बादी में अरा का मा तो हिब्बून। यहाँ तक के तुमने जो चीज़ तुमको पसंद थी वो तुमने देख ली। मैं पहले तर्जुमा पढ़ूंगा। यहाँ तक के जो चीज़ तुम्हें पसंद थी वो तुमने देख ली, उसके बाद तुमने हिम्मत हार दी और आपस में झगड़ा करने लगे। फिल अमरी, काय में झगड़ा करेंगे? फिल अमरी, हुक्म में। किसके हुक्म में? रसूल के हुक्म में। वह असाय तो इन्हें नाफरमानी करी। हत्ता इजा फशिल तुम व तनाजा तुम फिल अमरी असाय तुम मिम्बादी मा अरा का मा तो हिब्बून। फिर से पढ़ता हूं तर्जुमा ताकि मोमिन को समझ में आ जाए। खुदा ने बेशक अपना वादा सच्चा कर दिखाया जबकि तुम उसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे। यहाँ तक कि जो तुम्हें चीज़ पसंद थी वो तुमने देख ली, खुदा ने दिखा दी, क्या जीत होने लगी थी ना। लेकिन उसके बाद तुमने हिम्मत हार दी, फशिल तो हिम्मत हार दी और झगड़ा करा हुक्म में और नाफरमानी करी। यही हुआ था ना। क्या झगड़ा हुआ था, क्या नाफरमानी थी? सरकार ने कहा था कि ये जो दर्रा है इसके इसकी हिफाजत करना, यहाँ से किसी को आने न देना। यही हुआ था। और क्या कह रहा? हत्ता इज़ा फशिल तुम, तुमने हिम्मत हार दी। क्यों हिम्मत हार दी? क्योंकि माने गनीमत देखी थी बढ़ती हुई, है ना। हिम्मत हार दी, माले गनीमत बढ़ती हुई देखी, तो तुमने आपस में झगड़ा करना, तो दो गिरोह बन गए थे। झगड़ा कब होता है? जब दो गिरोह बन जाते। एक था सच्चा मुसलमान जो चाहता था कि सरकार हुक्म की पाबंदी करे और न जाए छोड़ के जहां पर उनको बिठाया गया, और दूसरा गिरोह ने कहा नहीं हम तो जाएंगे। हत्ता इज़ा फशिल तनाज़ा तुम फिल अमरी व असाय तुम, नाफरमानी की सरकार की, मिम बादी मा अरा को मा तो हिब्बून। उसके बाद जो तुमको जो पसंद था दिखा दिया। मिनकु मै युरिद दुनिया व मिनकु मै युरिद आखरा, तुम्हें बास तो दुनिया के तलबगार थे और बास आखिरत के ख्वासगार थे। सुम्मा सरफकुम अनहुम, तो खुदा ने तुमको उनसे फेर दिया। लियब्तलीकुम, ताकि तुमको आजमाए। सुम्मा सरफकुम अनहुम लियब्तलीकुम, तो खुदा ने तुमको उनसे फेर दिया। तुम भाग खड़े हुए ना, ताकि तुमको आजमाए। वलकद अफा अनकुम वल्लाहु ज़ू फज़लिन अलल मोमिनीन, फिर खुदा ने उसके बाद तुमको माफ़ कर दिया। और बेशक खुदा मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। इसका तर्जुमा है, इस आयत का तर्जुमा मैंने धीरे पढ़ा ताकि मोमिनों को समझ में आ जाए। तो जब दो गिरोह बन गए थे उसमें, जब दो गिरोह बन गए थे तो उन्होंने बात सुनी नहीं, और जब बात सुनी नहीं तो पीछे से हमला हो गया। जब पीछे से हमला हो गया तो जीत हार में बदल गई। जब जीत हार में बदल गई तो क्या हुआ कि जब लोग कत्ल होने लगे, जब कुफार ने मोमिनों को शहीद करना शुरू करा, 70 शहीद हो गए, तो लोग भाग खड़े हुए। सुम्मा सर्वकुम अनुम, खुदा ने भगा दिया मोमिनों को। सर्वकुम अनुम लिया बतलीकुम, ताकि तुमको आजमाए। तो आजमाइश उसी वक्त होती है मोमिनों की जब आपस में झगड़ा शुरू हो जाए। उस वक्त आजमाइश शुरू होती है कि एक तो होता है आकबे और एक होता है कमजोर। उस वक्त खुदा आजमाता है ये बतली को, उस वक्त आजमाइश शुरू होती, प्योरीफिकेशन होता है मोमिन का, तो प्योरीफिकेशन होता है लिए बतली कुम, लेकिन अल्लाह ने कहा मैंने तुमको फिर माफ़ कर दिया। वल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, खुदा मोमिन पर बड़ा फ़ज़्ल करने वाला है। जब आयत पढ़ते ना वल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, तो ये दिल है ना खुश होता है, मोमिन का दिल खुश होता है। आठवें इमाम कहते हैं ना, जब जन्नत की याद है तो मोमिन खुश होता है, जब दोज़ख़ की याद है तो मोमिन रोता है। जब अल्लाह कहते हैं वल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, तो दिल में लहरें पैदा होती हैं खुदा की मोहब्बत की। दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तो हालत ये थी कि मोमिनीन भाग गए, जहाँ तक कि ज़्यादातर रिवायतें यही कि सिर्फ दो लोग रसूल अकरम साथ रह गए थे, बाज़ रिवायत में 13 लोग रह गए थे, उसमें मौला मुत्तकियान तो है ही मौजूद, बाकी जो दूसरे नाम पलटते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिवायतों में सिर्फ दो ही लोगों को बताया, दो ही रह गए थे, बाकी सब भाग गए थे। सुम्मा सरफकुम अनहुम लियब्तलीकुम, ये हालत हो गई थी। लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है, हालांकि जिहाद से भाग रहे थे, जिहाद से भागना कितना बड़ा जुर्म है, कितना संगीन गुनाह, लेकिन अल्लाह ने माफ़ करा था। वल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, इस तुस्कीदूना वला तलूना अला अहदिन रसूल यदुकुम फिल उखराकुम फासाकुम गम्मन भी गम्मन लिकेला तहजनू अला मा फादकुम वला मा अथाबकुम वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। जब तुम दूर भागे जा रहे थे, जब तुम भागे जा रहे थे और रसूल खुदा तुम्हें पीछे खड़े होकर बुला रहे थे, और तुम पलट के भी नहीं किसी को देख रहे थे, तो खुदा ने तुमको गम के बाद गम पहुंचाया, ताकि जो चीज़ हाथ से चली गई, जो चीज़ जाती रही है, या जो मुसीबत तुम पर पड़ी हो, उससे तुम गमनाक ना हो। वल्लाह खबीरुम बीमा तामलुम, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको जानता है। ये आया थोड़ी मुश्किल को समझाना पड़ेगी थी, दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस तुस्कीदूना वला तलवुना अला अहदिम, तुम भागे जा रहे थे किसी को भी, अला अहदिम किसी को पलट के नहीं देख रहे थे, वो रसूल तुमको पीछे खड़े हुए, वो रसूल यदुकुम फी उखराकुम, रसूल पीछे खड़े तुम बुला रहे थे, ये सब वादे कहाँ चले गए थे। जब असाबकुम गम्मिन बिगम्मिन, तो खुदा ने तुम पे गम पे गम पहुँचाया, दो गम है इस पे, मीज़ान ने कहा दो गम कौन कौन से, दो गम पहुँचाए। लिकेला तहजनु अला मा फातकुम, ताकि जो चीज़ चले गई उस पर गम न करो, और जो मुसीबत पड़ी है उस पर गम न करो। तो दो गम क्या थे, एक गम तो ये था, जो पहला गम क्या था, पहला गम क्या था, खुदा ने बताया पहला गम ये था कि जो चीज़ लिकेला तहजनु अला मा फातकुम, के जो चीज़ हाथ से चली गई उस पर ना गम ना करो, और जो मुसीबत पड़ी उस पर गम ना करो, ये पहला गम था। क्या चीज़ हाथ से चली गई थी, हाथ से चली गई थी फतह, हाथ से चली गई थी ना, जीत रहे थे ना वो हाथ से, उसका एक गम था। ये दो गम टुगेदर थे, साथ में कौन सा गम थे, एक गम तो ये था कि जीत हाथ से चले गई, दूसरा कि हमको बहुत तकलीफें आई, शहीद हो गए, ये गम था ना। ये पहला गम था जो छोटा गम था, तो अल्लाह ने बड़ा गम दिया जिससे कि छोटा गम दूर हुआ, ये अल्लाह की रहमत थी। बड़ा गम गम भी गमिन, बड़ा गम क्या हुआ फिर, बड़ा गम ये हुआ कि हाय हमने रसूल को छोड़ दिया था और हम भाग गए थे, शर्मिंदगी पैदा हुई। तो शर्मिंदगी पैदा हुई तो ये छोटा गम भूल गए कि हमारे हाथ से जीत चले गई, या हमको हमारी शहादत हो गई, क्योंकि एहसास हुआ फिर, हालांकि रसूल को छोड़ के चले गए थे और रसूल भेड़ियों के बीच में घिर गए थे, भेड़ियों के बीच में, और रसूल अपना को छुड़ा रहे थे, क्योंकि शोर मच गया था कि रसूल शहीद हो गए। फिर धीरे धीरे एक साथ नहीं आया, पलट के धीरे धीरे आए, सब शर्मा के आए रसूल के पास। उसमें भी दो गिरोह, अभी अपन तफसीर में दो गिरोह, इसमें भी एक वो गिरोह था जो कि शर्मा के आया और अफसोस जारी करा, और तोबा करी इसने। एक गिरोह हुआ था, एक गिरोह हुआ था कि वो शर्मा के नहीं आया था, दोनों गिरोह पर उसकी अभी तफसील सामने आएगी। खैर अभी हम अभी उसकी बात आगे करेंगे, दुरूद पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ثم انزل عليكم من بعد غم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظن بالله غير الحق ظن الجاهلين يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون ما في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قتل إلا مغازيهم وليبتل الله ما في صدوركم وليمحيص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. یہ لمبی آیت ہے، ان شاء اللہ اس کو اپن دھیرے دھیرے پڑھیں گے، اس کے اندر پوری تفصیل ہے۔ اس کے بعد ہم نے تم پر غم پہنچانے کے بعد تم پر تسلی نازل کری، اور اس میں سے ایک گروہ پر نیند طاری ہو گئی، ایک گروہ پر نیند طاری ہو گئی، یہ ترجمہ ہے۔ پھر ترجمہ پڑھتا رہتا ہوں دھیرے دھیرے، پھر اس کے انشاءاللہ اس کو سمجھائیں گے۔ نیند طاری ہو گئی، اور دوسرا گروہ اپنے بارے میں پریشان ہو رہا تھا اور خدا کے بارے میں ناحق گمان زمانے جاہلیت کی کیا کرتا تھا، خدا کے بارے میں ناحق گمان زمانے جاہلیت کی کرتا تھا، کہتے تھے بھلا کچھ ہمارے اختیار کی کوئی بات ہے، کہہ دو کہ سارا اختیار خدا ہی کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں باتیں مخفی کرتے تھے جو ظاہر نہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، کہہ دو کہ جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل نکل کر اپنی لیٹنے کی جگہوں پر یعنی قبر کی جگہوں پر آ جاتے۔ اس سے یہ مقصود تھا کہ خدا ان کے سینوں کی باتوں کو آزما لے اور ان کے دلوں کو پاک کرے، اور خدا سینوں کی باتوں سے واقف ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اس کو ہم سکون سے اس کی تفصیل کریں گے۔ تو دو گروہ ہو گئے تھے، اب اس کی تفصیل ہے۔ اب دو گروہ ہو گئے تھے، ایک گروہ وہ تھا جس نے کہ معافی مانگی، رسول کے پاس آیا، دو گروہ طائفتم، دو طائف کی بات، دو گروہ کی بات ہوئی ہے، ترجمہ پڑھ دیا میں نے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ وہ رسول کے پاس آیا اور معافی مانگی، دوسرا گروہ صحیح نہیں تھا، لیکن میزان نے کہا کہ دوسرا گروہ بھی مومن کا گروہ تھا، یہ منافق نہیں تھے، کہ منافق کے بارے میں آگے آئے تھے اور خطرناک آئی، منافق وہ تھے جو آئے نہیں تھے جنگ پہ، پہلے ہی چلے گئے تھے۔ تو یہ جو دوسرا دو گروہ تھا، ایک تو جس نے معافی مانگی اور ایک گروہ وہ تھا جو مومن تھا میزان کے حساب سے، لیکن اس کی ایمان میں خرابی تھی، مطلب کمزور ایمان تھا۔ تو یہ جو قصہ ہے، یہ آیت اللہ ایمان نے اس کی تفصیل بیان کری کہ جب جنگ کے بعد رات میں گئے مدینے میں تو خوف یہ تھا کہ واپس سے قریش حملہ نہ کر دیں، تو جو وہ گروہ پہلا جو گروہ تھا اس کو سکون تھا، جس نے معافی مانگی تھی، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ تسلی نازل کری، ان کو نیند لا دی، کوئی جھپکی لگ گئی رات میں، تو ہے نا آیت، پھر ہم نے اس کے بعد ان کو تسلی نازل کی، ان کو نیند تاری کر دی، یہ وہ گروہ تھا جس کو گیا تھا رات میں۔ दूसरा गुरु जग रहा था, परेशान था, वो क्या था, कायफतुम कद अहमद अनफुसुहुम, जो कि परेशान था अपने आप से, वो खुदा के बारे में नाहक गुमान करता था जाहिलियत के ज़माने के, काफिरों की तरह सोचता था खुदा के बारे में, ये जो दूसरा गिरोह था काफिरों के बारे में सोचा था, कहने लगा कि भला हमारे अख्तियार में कोई बात है क्या, कहने लगा ये गिरोह क्या कहने लगा, भला हमारे अख्तियार में कुछ बात है क्या। तो मीज़ान ने कहा कि यही उनकी सोचने की ख़राबी थी कि सोचते थे कि कुछ चीज़ उनकी भी इख्तियार की है, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में होते ना। तो क्या जवाब दिया अल्लाह ने, कुल इन्नल अमरो कुल्लुहु लिल्लाह, कह दो कि सारा इख्तियार खुदा ही हाथ में। तो ये जो गिरोह था, कमज़ोर गिरोह, सोचता था कि हमारे हाथ में भी कुछ बात है, ये वो गिरोह था जो सोचता था कि मुसलमानों की जीत वाजिब है, वो जो सोचता था हम रसूल के साथ हैं तो फतह हमारे साथ होना ही है, वो सोचता था सारा हमारा फरिश्तों को आना ही है और हमको जीतना ही है, उसको काज और इफ़ेक्ट पर बिलीव नहीं था कि अल्लाह आजमाएगा भी और हो सकता है, क्योंकि जो ज़्यादातर अल्लाह ताला ने जो काम करा करा आदम से ख़ातम ले लें, तो ज़्यादातर जो हुआ है कई अंबिया शहीद हो गए, कई हारे हुई, ज़्यादातर तो ये हुआ ना, क्योंकि काज और इफ़ेक्ट होता, जो ताकतवर वो जीतेगा। कभी कभी ऐसा हुआ है, मौजज़ा अल्लाह ने दिखा है कि मोमिनों की हिफाजत करी जबकि दीन बुरा ही ख़त्म हो जाता है, जैसे जिस तरह के फिरौन के वक्त हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने बनाया बचाया बनी इसराइल को, ऐसा हर बार नहीं होता था, या बदर में हो गया था, ये क्या सोचे बैठे थे हमेशा ऐसा होने वाला है, अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ताला का ऐसा नहीं होगा, मैं तुमको आजमाऊँगा और देखूँगा तुम्हें पाक कौन है, ये पूरी आजमाइश थी, ये गिरोह ये सोचा बैठा था। और इसी गिरोह ने फिर वो सोचता था कि रसूल अकरम के हाथ में सब चीज़ें, वो फिर रसूल अकरम को ही वो कहते थे आपकी वजह से तकलीफ हुई है, उन पे ही सारा इल्ज़ाम, ये मीज़ान पढ़ रहा हूँ मैं, ये वो गिरोह था। तो ये सोचा बैठा था कि हमारे भी इख्तियार में कुछ बात है, ये इख्तियार जो था वो ज़माने जाहिलियत की ज़बान की बात थी, क्या था ज़माने जाहिलियत में क्या था कि हाँ एक गार्ड है वो गार्ड अलग है, बाकी दूसरे गार्ड भी होते हैं जो दूसरे काम करते हैं। तो उन्होंने सोचा था कि माशाल्लाह रसूल अकरम भी एक तरह के खुदा हैं, कि ये इनके साथ हम आए तो इनके हाथ में है सब जंग और ये जिताएंगे, ये मीज़ान पढ़ रहा हूँ मैं, ये है जहालत का वक्त, ये जहालत की थिंकिंग है, ये जहालत की थिंकिंग है, नमरूदी थिंकिंग है। नमरूद जानता था कि एक खुदा तो वो है लेकिन मैं भी करूँ, ये सोचते थे हाँ एक खुदा वो भी है रसूल भी है, तरह के छोटे मोटे खुदा के इनके हाथ में सब जंग है, इसलिए रसूल खुदा पर, और खुद को भी सोचते कि हाँ हम पे भी हम सब कर लेंगे, ये नहीं सोचते खुदा करेगा बैठ के, खुदा करे, कुल इन्नल अम्र कुल्लू लिल्लाह, अल्लाह ने कहा नहीं, कह दो सारा अम्र खुदा के हाथ में। फिर क्या कहा कि ये बातें अपने दिल में मख्फी रखते हैं जो तुम्हें जाहिर नहीं करते हैं, तो ये तो कह दिया रसूल अकरम को, लेकिन जो बात उनके दिल में थी वो जाहिर नहीं करते, वो दूसरी बात है जो आगे अल्लाह ने कही है, वो क्या कही है, क्या कहने लगे कि अगर हमारे इख्तियार की बात होती तो हम ये मारे ना जाते, ये तो और बड़ी बात कहने लगे हो जो बता ही नहीं उन्होंने रसूल अकरम को, कि अगर हमारे इख्तियार की होता तो हम मारे ना जाते, ये इतने बड़े सरकश हो गए थे, हालांकि थे भी ईमान की दायरे में लेकिन सरकशी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अल्लाह तुम्हारा क्या कहा कि जिनकी लिए लिखा हुआ था कि उनको कत्ल होना है, वो अपने घरों से निकल के आते और अपनी उस जगह चले जाते हैं जहाँ उनको दफन होना है, अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज़ है, जिनको शहादत के मर्तबे पे फाइज होना था वो अल्लाह वो खुद घर से निकल के आते, क्योंकि नसीब में लिखा था अल्लाह सुब्हान ताला ने। तुम क्या कह रहे हो, ये बात तुम किसको कह रहे हो, किसको इल्ज़ाम दे रहे हो, ये सब मेरे हाथ में, अल्लाह कह रहा कि जिसकी तकदीर में लिखा था वो घर से खुद निकल के जाता और जाके अपनी दफनगाह की तरफ जाता और वो मर्तबा पाता। तो अल्लाह ने क्या कहा कि इससे ये मकसूद था कि खुदा तुम्हारे सीने की बातों को आजमा ले, और इससे मकसूद ये था कि खुदा तुम्हारे दिलों को पाक करे, तमीज़ किसको कहते हैं, पाक करने को, ताकि तुम्हारे दिलों को खुदा पाक करे, वल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, वो खुदा तुम्हारे सीनों की बातों से वाकिफ़ है। एक दुरूद पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, इन लजीना तवल्लो मिनकुम योमल तकल जब आने इन नमस्तल हम शैतानु बी बादिमा कसबू वल्लक़द अफल्ला अनहुम इन अल्लाहा गफूरुन हलीम, जो लोग तुम में से मुड़कर चल दिए, पीठ मुड़कर चल दिए, जिस दिन दो जमातें आपस में मुठभेड़ कर गईं, तो उनके आमल की वजह से खुदा शैतान ने उनको बहका दिया, लेकिन खुदा ने उनका कसूर माफ़ कर दिया। खुदा बख्शने वाला और बुर्दबार है। इस आयत में तवज्जो चाहता हूँ मैं। जब दोनों जमातें भिड़ गईं और जो लोग छोड़ के चले गए, तवल्लौ मिनकुम, वो क्यों हुआ था? अल्लाह कह रहा है इन्नमा तज़ल्लू शैतानु बी बादी माँ कसबू। तवज्जो दो इस पे, वो क्यों छोड़ के भाग गए? बी बादी माँ कसबू, वो जो उन्होंने कमाया था उसकी वजह से क्या कमाया था? गुनाह कमाए थे, गुनाह कर थे वो। बी बादी माँ कसबू शैतान उनको क्यों बहकाया? बी बादी माँ कसबू, वो जो लोग छोड़ के भागे थे, बी बादी माँ कसबू, उनके गुनाह थे, उनके जंग से आने के पहले जो गुनाह अपने ऊपर करते आए थे, गुनाहों से इतने कमजोर हो गए थे, अल्लाह सुब्हान तआला कहता है कि शैतान ने बहकाया तो छोड़ के चले गए। वो लकत आफा अल्लाह अनुम, नहीं, खुदा ने उनको फिर माफ़ करा। इन्नल्लाहा गफूर हलीम, बेशक खुदा बख्शने वाला और बुर्दबार है। ये जो आयत आई है बख्शिश की आयत दोनों गिरोह के लिए आई है। पहले गिरोह के लिए भी आई है, मीज़ान कह रहा है, और दूसरे गिरोह के लिए आई है। लेकिन दोनों के लहजे में खुदा का फ़र्क है। जो पहली जो आयत आई थी, सुम्मा सरफ़ अनहुम लियब्तलिकुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, ये पढ़ी थी ना आयत उन्होंने, वो लहजा अलग था खुदा का। वो क्या था कि खुदा ने क्या कहा था कि मैंने तुमको माफ़ कर दिया, खुदा मोमिनों पर बड़ा फ़ज़ल करने वाला। वो आयत आई थी वो फ़ज़ल की पहले गिरोह पर। ये जो आयत आई है इन्नल्लाह गफूर हलीम आई है पूरे सब लोगों की जमात पर, कि इससे इस गिरोह से दूसरा खुश नहीं था अल्लाह, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने अपनी बुर्दबारी दिखाई है, इसमें हिल्म दिखाया, कहा इन्नल्लाह गफूर हलीम। वो नहीं कहा ज़ूफ़लिन अलल मोमिनीन, देखें अल्लाह बारीक भी है, अल्लाह दोनों गिरोह को देख रहा है। अल्लाह मुनाफिक भी देख रहा है जो नहीं आया, अल्लाह दोनों मोमिनों के लोगों को देख रहा है। एक वो था जो कि शर्मा के आया, एक वो था नाह ख्याल कर रहा था। अल्लाह ने कहा ठीक है तुम करो नाह ख्याल, मैं तुम्हें माफ़ करूंगा, लेकिन मैं हलीम हूँ, मैं बुर्दबार हूँ। कई गिरोह बन गए थे वहाँ, कई गिरोह बन गए थे। आप सोचिए इमाम ज़माने में कितने गिरोह बनेंगे, आज कितने गिरोह हैं मोमिनीन के, आप बताएं आज कितने गिरोह, हम में कितने गिरोह हैं, हम कहाँ बैठते हैं आज, आज के मरहलों में हम कहाँ बैठते हैं? अल्लाह ताला से हम पनाह चाहते हैं शैतान की, शैतान से पनाह चाहते हैं कि हमारे गुनाह इतने कि हमको शैतान बार बार देखा देता है, हम कितना छोड़कर भागते हैं, हमारे गुनाह हमारे कितने आड़े आते हैं कि हम खुदा की दाद न कर पाते हैं। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तकूनू कल्लज़ीन कफरू वो कालूल इखवान हिम इदा ज़रबू फिल अर्द आओ कानो गुज़्ज़ा लव कानो इंदना मा मातु व मा कुतिलु लियज़ल्लाहु ज़ालिका हज़रतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युही व युमीत वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। ईमान लाने वालों, तुम काफिरों की तरह ना हो जाना जो अपने भाई से कहते हैं कि अपने भाई से कहते हैं जब वो सफ़र पर निकलते हैं या जंग पर जाते हैं कि अगर हमारे पास होते तो ना तो मरते ना मारे जाते। इससे मकसूद ये कि खुदा उनके दिलों में अफसोस पैदा कर दे। वल्लाह यही व उम्मीद, खुदा ही मारता है और खुदा ही हयात देता है। वल्लाह बिमा तामलून बसीर, वो खुदा जो कुछ तुम करते हो देख रहा है। ये आयत की उसमें आई है। इस तरह का अल्लाह ताला ने कहा या नौजवान ला तकूनू कल्लज़ीन कफरू, ईमान वालो तुम काफिरों की तरह मत हो जाना। तो जिसने इस तरह का कौल करा था वो काफिर था, जिसने इस तरह का कौल करा था वो काफिर था। काफिर का क्या कौल था? वो कुफ में चले गया। इसने कहा कि तुम अगर सफर पर जाओगे या जंग पर जाओगे तो तुम उससे अच्छा रहो तुम हमारे पास रहते, तो ना तो तुम मारे जाते ना मरते, तुम मारे जाते ना मरते। तो खुदा चाहता है कि उनके दिलों में हसरत एक अफसोस पैदा कर दे। ये अल्लाह की तरफ से सजा है। जब जो इस तरह का कौल कर कहता है उसको अल्लाह सजा क्या देता है? ली ये जल्लाह जाले को जाले का हसरतन फी कुलूबिहिम, अल्लाह के दिलों में ग्रीश पैदा कर देता है, सैडनेस।
मोमिन ऐसा नहीं बात नहीं करता है, मोमिन खुश रहता है। वो अभी आगे आयत आएंगे उसके बारे में, मोमिन कैसे कैसे तरह के स्टेटमेंट मोमिनों को भी आए, वो भी आगे आने वाला है। लेकिन ये वो थे जो कुफार थे, जो इस तरह की बातें कर रहे थे। वल्लाह यही व युमीत, खुदा ही मौत जिंदगी देता है, खुदा ही मारता है। वल्लाह भी मातामल बसीर, जो कुछ तुम करते खुदा उसको देख रहा है। इस तरह के जो अकवाल कह रहे थे वो कुफार थे, जिन्होंने इस तरह कह दिया। क्योंकि ग्रेट्स है ना, अलग अलग अल्लाह ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। एक ने क्या कहा था कि हमारे इख्तियार की कोई बात नहीं है, और किसी ने क्या कहा था कि हमारे इख्तियार में तो हम न मारे जाते। एक ने स्टेटमेंट दे दिया कि हमारे पास बैठे रहते तो न मरते न मारे जाते। ये अलग अलग गिरोह थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहता है वा इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह अव मुत्तुम लमग़फ़िरत मिन अल्लाह व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमाऊन। अगर तुम खुदा की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो खुदा की बख्शिश और रहमत जो कुछ तुम जमा करते हो उससे बहुत बेहतर है। अल्लाह कह रहा है कि तुम क्या बात कर रहे हो, पहले तो अल्लाह ने कहा कि जिसकी नसीब में मारा जाना है वो तो निकल के चले जाता, तुम क्या बात कर रहे हो। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने आगे क्या कहा कि अगर तुम खुदा की राह में मारे जाओ, अल्लाह ने पहले शहादत को बताया, इसमें पहले शहादत है फिर मौत कहा अल्लाह ने, क्योंकि शहादत अफजल है। कहा कि अगर तुम खुदा की राह में मारे जाओ या मर जाओ, मारे जाओ बेहतर है। अल्लाह ने पहले उसका वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह अव मुत्तुम, या तो तुम मारे जाओ या मर जाओ। तो ये जो कुछ जमा करते हैं उससे खुदा की बख्शिश और रहमत बहुत बालातर है। जो कुछ का दुनिया में वो सब कुछ ये जो जमा करके बैठे हैं उससे खुदा की मगफरत बख्शिश और रहमत बहुत बेहतर है। वला इन मुत्तुम अव कुतिलतुम इलल्लाह तुहशरून। फिर अल्लाह कहता है कि अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ तो तुम सब खुदा के सामने जमा किए जाओगे। अल्लाह सुब्हान तआला हर बात साफ जाहिर करिए। इसके अंदर इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे बदन मौत के लिए तैयार हैं तो सबसे अच्छी मौत तलवार की मौत है। ये इमाम हुसैन का कौल है, सबसे अच्छी मौत तलवार। हमको हम दुआ करते हैं कि हमारा अल्लाह हमारे दिल को तहमीज करे, पाक करे, ताकि हम मौत के लिए तैयार हों। तलवार की मौत से बेहतर कोई मौत नहीं, इमाम हुसैन ने कहा। देखें अभी हमने ना आयतें पढ़ी, ये हमने आयतें कहाँ की पढ़ी, हमने ये आयतें पूरी ओहद की पढ़ी। अब इन आयतों के ज़ेल में करबला देखते रहे कि करबला के अंदर इस तरह का कोई वाकया ना हुआ कि शैतान ने बहका दिया। हालांकि ओहद की के मुजाहिदों की बड़ी इज्जत है, पूरी दुनिया के मुसलमान की इज्जत करते हैं, आज भी जाके ज्यारतें करते हैं ओहद की जंग की, कि उन्होंने किस तरह से कुर्बानियाँ दी थी, वो ज्यारतें करते हैं। अल्लाह ने वो माफ़ भी करा था। लेकिन करबला के जो मुजाहिद हैं, करबला के जो मुजाहिद हैं कि जिन्होंने जब 10 मुहर्रम को सुबह के वक्त जो खड़े थे, जो जब मौलाना ने जब जिरा गुल कर दी उसके बाद जो खड़े थे मुस्तहिद, अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा ना ले लीजिए तुमको आजमाओ, तुम्हारे दिलों को पाक करूं। आयतें पड़ी गई हैं अभी, आजमाओ दिलों को पाक करूं। वो आजमाए हुए थे, पाक हुए हुए थे, मुसीबत उठाए हुए थे, 3 दिन के भूख और प्यास थे, अपनी अपनी जगहों पर कायम थे, ना उनको शैतान ने भगाया। अरे देख ले कुरान हकीम, ना वो कुछ कमज़ोर हुए, ना किसी ने उनको फुसलाया। एक हेबत थी, अभी हमने पढ़ा के सनुल्की फी कुलूबि लज़ीन कफ़रू रौबा, हम कफर काफिर दिल में रोब डाल देंगे। हाय रोब, रोब वो था जो अबुल फजल का रोब था, कि उस रोब की वजह से उन्होंने लश्कर को अपनी आँखों से रोका था।